مصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो कल हमने क्लास में सूरह अनआम पढ़नी शुरू कर दी थी, जो कि मारुफुल कुरान जिल्द नंबर 3 के अंदर है। शुरू की चंद आयात का तर्जुमा हमने पढ़ के मुकम्मल कर लिया था, और आज रूटीन के मुताबिक उनके खुलासे तफसीर को पढ़ना था और फिर मारुफ मसाइल पढ़ना शुरू करने थे। लेकिन कुछ वजूहात से हमने एक दिन के लिए एक्सेप्शन लिया है, और एक स्पेशल तफसीर क्लास जो कि बिल्कुल आखिरी वक्त में व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अनाउंस की गई है, तो वो करने का इरादा किया। वो है सूरह अनफाल की इन आयात की के ऊपर थोड़ी सी बात, ठीक है। यानी है तो ये तफसीर ही की क्लास इंशाल्लाह, लेकिन हम सूरह अनआम की बात को आगे बढ़ाने के बजाय इन आयात के ऊपर और एक और आयत जो कि सूरह अहज़ाब की आयत है उसके ऊपर आज कुछ बात करेंगे। और इसकी वजह क्या है कि जो कल की क्लास के अंदर आखिरी बात हुई थी, जो कि दरअसल किसी का सवाल था और उसके जवाब में फिर हमने काफ़ी सारी बात कल की क्लास में करी थी, वो ये था कि जब दीन आसान है तो जब हम जी दीन को सीखना शुरू करते हैं तो ये इतना मुश्किल लगना क्यों शुरू हो जाता है, ये मुश्किल लगना क्यों शुरू हो जाता है। तो इसका जवाब इस आजिज ने क्लासेस से ही पूछा था जो लोग मौजूद हैं, और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे जवाब भी दिए थे। लेकिन जो बात फिर बिलाखिर समझाई थी वो ये थी कि ये जो मुख्तलिफ रीजंस लोगों ने दिए हैं, जो कि सही और अच्छे रीजंस हैं, कि नफ्स के ऊपर भारी होता है और हमारी फितरत ख़राब हो चुकी होती है, इस वजह से जब हम दीन को सीखना शुरू करते हैं तो वो हमें मुश्किल लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो इन सब को जमा करके जो एक जवाब इस आजिज ने आप लोगों को बताया था वो ये था कि उसकी वजह यही होती है कि हम सुन्नत तरीके से दीन सीखना शुरू नहीं कर रहे होते, ठीक है। हम दीन जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से सीखना शुरू नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने मिजाज के मुताबिक अपने ही तरीके से जो है ना वो दीन सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह हम ऐसा क्यों करते हैं भाई, एक जहन में सवाल आ सकता है कि एक बंदा जो है वो नया नया दीन की तरफ आना चाह रहा है तो उसको क्या पता कि सुन्नत तरीका क्या है, ठीक है। उसको क्या पता कि सुन्नत तरीका क्या है, तो वो फिर कैसे जो है वो सुन्नत तरीके से दीन को सीखना शुरू करे, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो यही कहा जाएगा कि इस दौर इस जमाने के अंदर हमने जो दीन का काम है ना, दीन की मेहनत है, दीन की दावत व तबलीग का जो जो तरीका है, ठीक है, यानी उन लोगों को ने के जिनके पास पहले से दीन मौजूद है, राइट, जो कि पहले से दीन के ऊपर चल रहे हैं, ये कुछ गलती जो है वो उनकी तरफ भी बनती है, ये उनकी भी गलती बनती है कि दीन को हम बेदीन लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, दीन को हम बे दीन लोगों के सामने, हमसे मुराद दीनदार लोग, ठीक है, दीनदार लोग जो दीन से दूर हैं उन लोगों के सामने दीन को कैसे पेश करते हैं, कैसे पेश करते हैं, ठीक है, आप बताएं कैसे पेश करते हैं। दीनदार लोग दीन से दूर लोगों को दीन कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे पेश करते हैं जी, कोई बताएगा इसका जवाब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है, कैसे पेश करते हैं जी। आप सब माशाल्लाह दीनदार हैं, जब भी तो इस क्लास में मौजूद हैं, और किसी ना किसी को तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कोशिश करी होगी दीन प्रेजेंट करने की, ठीक है। तो कैसे पेश करते हैं, विद एरोगेंस, माशाल्लाह मर्दों की तरफ से पहले जवाब आए हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट तरीके से पेश करते हैं, ठीक है, ये इनका इनकी ये अंडरस्टैंडिंग है। फिर किसी ने जवाब दिया है विद एरोगेंस, यानी बड़े तकब्बुराना तरी मुतकब्बिराना अंदाज में जो है ना वो उनके सामने दीन पेश करते हैं। अच्छा, फिर किसी ने जवाब दिया है कि वी डंप इट ऑन देम, हम पूरा का पूरा जो दीन है ना वो गोया के उनके ऊपर एक तरह से डंप कर देते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करते उनके सामने दीन, ठीक है। अच्छा, फिर किसी ने जवाब दिया तनकीदी निगाह से कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, इस तरीके से हम दीन लोगों के सामने पेश करते हैं, ठीक है। और खवातीन की तरफ क्या जवाब आए हैं, खवातीन की तरफ भी बहुत सारे जवाब आए हैं, उनमें से एक है कि भी हम डम कर देते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह हिदायत दे हमें दुआओं की तरफ चलने, इन्होंने तो पूरा मैसेज, यानी हर जगह हर जगह ही आपने काम डम करके करना है, ठीक है। सवाल जो पूछा था उस सवाल का जवाब देने के बजाय जो है वो आपने आगे से दो चार और भी, बहरहाल ठीक है, तो बहुत मुश्किल बना करके उनके सर पर थोप देते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं, सर पे थोप देते हैं, डम करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं, वेरी स्ट्रिक्टली जो है वो पेश करते हैं, अजाब से डरा कर पेश करते हैं, अजाब से डरा कर पेश करते हैं, तो अल्लाह ताला ने नहीं ऐसे पेश किया, अजाब डरा कर से डरा कर। अच्छा, अपना एग्जाम्पल दे के हम कैसे इस पर आए, हम ऐसे पेश करते हैं, आप ऐसे पेश करती हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो कचरे दान की तरह से उंडेल देते हैं, हम चाहते हैं कि फौरन एब्जॉर्ब कर ले वो हमारी बात को, नॉट वेरी बिगिनर फ्रेंडली, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा लिखा, नॉट वेरी बिगिनर फ्रेंडली तरीके से, हम चाहते हैं कि फौरन एब्जॉर्ब कर लें, अपने से मानूस करते हैं फिर दावत देते हैं, आप ऐसा काम करती हैं, ये तो बहुत अच्छा काम है कि अपने से मानूस करती हैं फिर दावत देती हैं, दीन को आसानी के साथ एग्जाम्पल्स दे के अकाबरीन के तरीके के खिलाफ हम पेश करते हैं दीन को, ठीक है। तो ये सारी गलतियां हैं जो कि आपने बताई हैं कि हम इस तरीके से दीन को जो है ना वो किसी के सामने पेश करते हैं, ठीक है, लेकिन वी जस्ट गेट अलोंग विद देम, वी जस्ट गेट अलोंग विद देम बाय शेयरिंग द स्मॉल ऑडियो क्लिप्स, आप ऐसे पेश करते हैं अपने बिहेवियर से, ठीक है। देखें, कल की जो क्लास हुई थी उसके आखिर में इस टॉपिक के ऊपर बात हुई थी और उसके ऊपर एक जवाब आप लोगों को समझाया था, ठीक है ना, आप लोगों ने जो जवाब दिए हैं ना उनमें से एक जवाब भी उस जवाब के मुताबिक नहीं, राइट, एक जवाब भी उस जवाब के मुताबिक नहीं जो कि कल आप लोगों को समझाया था, इसी वजह से तो सूरह अनफाल की इन आयात के ऊपर बात करनी है, इसी वजह से तो सूरह अनफाल की इन आयात के ऊपर बात करने का दिल में शायद अल्लाह ताला ने ख्याल डाला, वरना तो हम आगे बढ़ने वाले थे, राइट, या इस आजिज ने अपनी तरफ से फैसला किया, अल्लाह के ख्याल डाले बगैर ही फैसला कर लिया, कैसे हो सकता है वैसे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने ख्याल डाला या हमने खुद ही फैसला कर लिया, जैसे भी क्या, राइट, कल जो बात समझाई थी वो तो गई ऊपर से, राइट, तो वही तो बात है, तो एक जवाब भी उस जवाब के मुताबिक नहीं है, सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं, मर्द भी और औरतें भी अपनी अपनी हाँक रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना, तो फिर क्या फायदा क्लास में आने का, जब अपनी ही हाँक नहीं है तो क्लास में क्यों आए हुए, सीखने के लिए क्यों आए हुए, सुनना नहीं है, राइट, सुनना नहीं। कल क्या बात हुई थी कि पुराने जमाने में तो एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकालते थे, तो वो थोड़ी देर दिमाग में जो है ना वो चीज रह जाती थी दूसरे कान में निकलने से पहले। आजकल तो मोमेंट्स में काम हो जाता है ना, और अल्लाह के यहाँ तो वैसे भी मोमेंट्स के अंदर काम हो जाता है, उससे भी कम टाइम में काम हो जाता है अल्लाह ताला के यहाँ तो। लेकिन हम जो है ना वो उसकी भी गलती नहीं करना चाहते कि एक कान से सुने फिर दूसरे कान से निकालें, कहीं ऐसा ना हो कि दरमियान में कुछ देर रह जाए। हम एक कान में भी घुसने नहीं देते उस बात को, एक कान में भी घुसने नहीं देते बात को, ठीक है। क्या करें फिर, ठीक है। बहरहाल हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, कोई सुने ना सुने। तो भाई सुन्नत तरीका, सुन्नत तरीका, ठीक है। अकाबरीन के तरीके के खिलाफ करते हैं, तो अकाबरीन का तरीका क्या है? सुन्नत तरीका है ना, अकाबरीन का तरीका। तो दीन पे लाने का तरीका तो ये था जो सहाबे कराम का तरीका था। हमारे अकाबरीन कौन है? सहाबे कराम है। तो सहाबे कराम किस तरह से दीन पे लेकर के आते थे कि वो ला करके जोड़ते थे, राइट, वो ला करके जोड़ते थे लोगों को, पकड़ पकड़ के लेकर के आते थे। यानी पकड़ पकड़ से मुराद जबरदस्ती पकड़ के नहीं, समझा समझा करके, कन्विंस कर करके लेकर के आते थे, और सिस्टम से जोड़ते थे, उसवे हसना से जोड़ते थे, उस मॉडल से जोड़ते थे जो कि अल्लाह के हुक्म पे नबी अलैहिस्सलाम ने बनाया था, राइट, जो अल्लाह के हुक्म पे अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उसवतुन हसना, ठीक है ना। ये है सुन्नत तरीका, ये है कुरान मजीद का बताया हुआ तरीका। हम कैसे दीन की तबलीग करते हैं? हम लोगों को किस चीज से जोड़ते हैं? हम लोगों को आमाल से जोड़ते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को आमाल से जोड़ते हैं, हम लोगों को जो है ना वो अपनी तरफ से जो हम हमारे समझ में आता है हम वो उनको बताना शुरू कर देते हैं। हम आगे जोड़ने की मेहनत नहीं कर रहे होते, उसवे हसना उस मॉडल से जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तो इसी वजह से कि ये किसकी गलती है? ये दीन से दूर वाले लोगों की गलती नहीं है भाई, वो तो दीन में आना चाहते हैं, वो तो दीन की जो है वो इल्म हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने दीन कैसे प्रेजेंट किया जाता है कि जी दीन तो कोई थ्योरेटिकल किस्म की चीज है। आप फलाने जो है वो किताब पढ़ लें, आप जो है फलाने जो है वो वीडियो देख लें, आप जो है फलाना जो है वो बयानात सुन लें, आप फलाने जो है वो वजीफों की किताब पढ़ लें, आप फलाने जो है वो अमाल की किताब पढ़ लें, और आप जो है फराइज सीखना शुरू कर दें, और आप जो है सुन्नतें सीखना शुरू कर दें, और आप जो है वो फलानी चीज सीखना शुरू कर दें। यानी हम इस तरीके से डंप कर देते हैं इतनी सारी चीजों को, तो अब वो एक नया बंदा होता है या एक नई बंदी होती है, तो उसके लिए तो ये दीन बहुत मुश्किल बनना शुरू हो जाता है ना, राइट। हमारा तो ये काम था कि हम उनको ला करके जोड़ते, सिस्टम में ला करके जोड़ते, और इसके जो है वो बेनिफिट्स बताते, और इससे दूर रहने के हार्म्स बताते, राइट, सिस्टम के बेनिफिट्स बताते, और सिस्टम को अवॉइड करने के हार्म्स बताते, नुकसानात बताते, ताकि लोग जो है वो सिस्टम से जुड़ जाएं। यह है दीन की दावत का तरीका, यह है सहाबे कराम का तरीका, ठीक है ना। और यही जो है ना वो कुरान मजीद से जो हमें पता चलता है, वो कुरान मजीद भी हमें यही बता रहा होता है कि दीन से दूर रखने की जो मेहनत है वो कौन कर रहा होता है, दीन से दूर रखने की मेहनत कौन कर रहा होता है? शैतान कर रहा होता है, राइट, शैतान कर रहा है ना दीन से दूर रखने की मेहनत। तो भाई शैतान के खिलाफ कौन सी वाली मेहनत चल रही होती है? शेख वाली मेहनत चल रही होती है ना, तो शैतान की मेहनत को काउंटर करने का तरीका तो शेख की मेहनत को सपोर्ट करना होना चाहिए। लेकिन पूरी पिक्चर में से, हमारे दीन की तबलीग की पूरी पिक्चर में से शेख का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसके अंदर, राइट। हम जो है वो आमाल, हम जो है वो किताबें, हम जो है वो यूट्यूब, हम जो है वो क्लिप्स, हम जो है वो दूसरे इस किस्म की चीजें, इनसे जोड़ने की, इनको जो है वो लोगों को बता रहे होते हैं, इनको दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भी कसूर है, और फिर दूसरी साइड पे आम लोगों का भी कसूर यही होता है कि वो भी जो है ना वो इस यानी दीन वालों से दीन को सीखने की बजाय वो बिल्कुल जो जो बेजान चीजें होती हैं ना उनसे जो है वो दीन सीखने की कोशिश करते हैं। ये किताबें क्या हैं? ये बेजान चीजें हैं, राइट? किताब किस चीज से बनती है? पेपर से बनती है ना। पेपर कैसे बनता है? पेपर जो है वो लकड़ी से बनता है। लकड़ी क्या चीज है? साइंस के हिसाब से तो वो नॉन लिविंग थिंग्स में, राइट? ठीक है, वो लकड़ी जो है वो जब तक उसके अंदर कहते हैं जड़ लगी हुई है तो वो लिविंग थिंग में से है, लेकिन इट डज नॉट रिस्पॉन्ड बैक टू यू इन दिस सेंस। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड बैक टू यू। वो आपको जवाब नहीं दे सकती, ठीक है? लकड़ी आपको जवाब नहीं दे सकती, लकड़ी आपकी इसलाह नहीं कर सकती, लकड़ी आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकती, लकड़ी आपको जो है वो कन्विंस नहीं कर सकती। तो बेसिकली लकड़ी से बने हुए जो पेपर्स होते हैं, पेपर से बने हुए जो किताबें होती हैं, वो एक तरह से एक नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है? उसी तरीके से जो आप कंप्यूटर के ऊपर जो चीजें सुन रहे होते हैं, तो कंप्यूटर किस चीज से बना होता है? ये तो मेटल से बना हुआ होता है, राइट? ये तो मादनियात से बना हुआ होता है ना, मिनरल से बनी हुई चीज होती है ना, जैसे कि आप जो है वो यानी बिल्कुल ही स्टोन, राइट? कंप्यूटर तो लकड़ी से भी बना हुआ होता है। ये तो और भी सबसे जो निचली चीज होती है जिसको जमादात कहते हैं, ये उनसे बना हुआ होता है। ये तो नॉन लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग थिंग से जो है वो दीन हासिल कर रहे हैं, ठीक है? वेयर इज दैट लिविंग लिंक? वो जिंदा इंसान का लिंक किधर है जो कि सुन्नत ने हमें दिया था, जो अल्लाह ताला की मर्जी वाला तरीका था, वो लिंक किधर है? ठीक है, तो ये गलती होती है हमारी, जिसकी वजह से दीन जो है ना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाता है, ठीक है? दीन हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। ये रीजन था, यही समझाया था। और आप में से अक्सर ने, एक आपके छोड़ करके किसी ने भी जो है उस बात को याद नहीं रखा, या ये कि समझा ही नहीं इस बात को, ठीक है? क्या लिखा है इन्होंने? तो ये कहना सही है कि कुरान पाक हमसे हम कलाम है, बस एक ख्याल आया मुझे। कुरान पाक आपसे हम कलाम है? कुरान पाक में से आपको आवाज आती है? कुरान पाक आपसे हम कलाम है, ये एक शायराना तखयल है कि कुरान पाक आपसे हम कलाम है। कुरान पाक से आपसे हम कलाम होता नहीं है, ये एक शायराना तखयल होता है, ठीक है ना? जो कुरान पाक को पढ़ाने वाला उस्ताद होता है ना, वो आपसे हम कलाम होता है, ठीक है? कुरान पाक आपसे हम कलाम नहीं होता, ठीक है? दो चीजें हैं जिंदा, बाकी सारी चीजें हैं मुर्दा, याद रखें। दो ऐसी चीजें हैं, चीज का लफ्ज भी जो है वो मुनासिब नहीं है अदब के हिसाब से यहां पर, लेकिन समझाने की खातिर, दो दो जात ऐसी हैं जो कि जिंदा है, बाकी हर चीज मुर्दा है। वो कौन सी दो जात हैं जो कि हमारे लिए जिंदा जातें हैं? कौन सी दो जातें हैं बताएं जी? कौन सी दो जातें हैं जो हमारे लिए जिंदा हैं, लाइव हैं? बाकी सारी चीजें जो है ना वो हमारे लिए एक मुर्दा या एक पैसिव, मुर्दा का लफ्ज जो है वो जरा बेअदबी का इजहार है इसके अंदर, लेकिन पैसिव कह लें। एक्टिव हमारे साथ कौन सी दो जाते हैं? एग्जैक्टली, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मर्दों की तरफ से बड़ा सही जवाब आया, अल्लाह और शेख। अल्लाह वो जिंदा है, हय्युन ला यमूतु, और दूसरी क्या चीज है हमारे लिए जो कि जिंदा है? वो लाइव टीचर, वो शेख, ये हमारे लिए जिंदा है। एवरीथिंग एल्स इज पैसिव फॉर अस, नथिंग एल्स इज एक्टिव फॉर अस। चाहे वो कोई भी किताब हो, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो कोई भी रिकॉर्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब कुछ पैसिव है हमारे लिए, सब कुछ पैसिव है। हत्ता कि हमारे अकाबरीन भी जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो भी हमारे लिए पैसिव हैं। वो हमसे कलाम नहीं करते, वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं और कब्रों में उनकी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, राइट? बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है उनकी कब्रों में, लेकिन वो जेरे जमीन है, जमीन के नीचे चले गए हैं, जमीन के ऊपर नहीं है वो। तो हमारे लिए लाइव सिर्फ दो हस्तियां हैं, एक है अल्लाह और एक है वो जिसके साथ हमारा इस्लाही ताल्लुक है, ठीक है ना। बहरहाल तो ये बात जो है वो कल की थी, ये तो कल ही की बात के ऊपर हम बात कर रहे थे अभी। इन्होंने लिखा जी कुरान जिंदा किताब है, इसका मतलब समझा दीजिए प्लीज। मुझे नहीं पता कुरान जिंदा किताब का क्या मतलब होता है, आप जिस जिसने आपको ये बात बताया आप उसी समझिए। व्हाट अबाउट आवर बिलव्ड प्रोफेसर, हिज मैसेज इज ऑलवेज विद अस। कुरान अजीम उशान, उसमें लिखा हुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, उसके अंदर लिखा हुआ है जो मसहफ हमारे पास होता है, युदल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि ये गुमराह करता है कसीर लोगों को और ये हिदायत देता है कसीर लोगों को, ठीक है। कुरान अजीम उशान कसीर लोगों को गुमराह करता है और कसीर लोगों को ये हिदायत देता है, ठीक है। अब आप बता दें कौन कुरान से गुमराह होता है, इसका मतलब क्या है कि कुरान लोगों को जो है वो पकड़ पकड़ करके गुमराही के रास्ते पर डाल रहा होता है, क्योंकि कुरान एक लाइव किताब है, राइट। तो कुरान पकड़ पकड़ के लोगों को गुमराही के रास्ते पर डाल रहा है और बाकी लोगों को पकड़ पकड़ के हिदायत के रास्ते पर डाल रहा है। क्या मतलब है इसका, कौन लोग कुरान से हिदायत पाते हैं और कौन लोग कुरान से गुमराही, कौन लोग कुरान से हिदायत पाते हैं और कौन लोग कुरान से गुमराही हासिल करते हैं। जी अच्छा, इन्होंने जवाब बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इस वक्त आपका और हमारा ताल्लुक एक्टिव है कि पैसिव है, आप बताएं। आप खुद ही बताएं ना सवाल के जवाब, एक्टिव है कि पैसिव है। व्हाट अबाउट आवर बिलव्ड प्रेजेंट मैसेज, जी बिकॉज देर इज टू वे कम्युनिकेशन, इवन दो वन टू मैनी है लेकिन देर इज अ टू वे कम्युनिकेशन। आप सवाल कर रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ आप जवाब दे रहे हैं, तो ये पैसिव कहलाएगा कि एक्टिव कहलाएगा, ऑब्वियसली एक्टिव एक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो कुरान से कौन लोग हिदायत पाते हैं, जो के नबी अलैहिस्सलाम को मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की मानते हैं, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल माना उन्होंने इसी कुरान से हिदायत पा ली, और जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल नहीं माना उन्होंने जो है उस कुरान से गुमराही पा ली, ठीक है। तो कुरान बीइंग अ लाइव बुक डज नॉट मीन कि कुरान किसी को हाथ से पकड़ करके हिदायत पे लेकर के आता है, कुरान किसी को हाथ से पकड़ करके गुमराही पे लेकर के आता है। ये एक्टिव कनेक्शन कम्युनिकेशन कुरान के साथ नहीं होता, ये एक्टिव कम्युनिकेशन तो कुरान को पढ़ाने वाले उस्ताद के साथ होता है ना, कुरान को पढ़ाने वाले उस्ताद के साथ ये एक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। जो उस्ताद की मान करके कुरान को सीखता है, उस्ताद से कुरान को सीखता है, वो हिदायत के रास्ते पे होता है नेक उस्ताद के साथ, कोर्स। और जो उस्ताद की मान करके कुरान को नहीं सीख रहा होता बल्कि शैतान को उसने अपना उस्ताद बनाया हुआ होता है, तो वो कुरान पढ़ता है लेकिन गुमराह हो जाता है। बहरहाल तो उन्होंने क्या लिखा, दोज हु फियर अल्लाह गेट गाइडेंस फ्रॉम द कुरान, दोज हु डोंट फियर अल्लाह गो एस्ट्रे, ठीक है बिल्कुल सही है। तो हु फेयर्स अल्लाह, उसके ऊपर सवाल पूछे, हु फेयर्स अल्लाह। उस्ताद जिंदा शख्सियत है, अगर वो सही है तो हिदायत पाएगा, और अगर मुलहिद और बदअकीदा है तो गुमराह ही पाएगा, ठीक है ना। यानी अगर वो मुलहिद और बदअकीदा उस्ताद है तो उसी को तो शैतान कहते हैं, शयातीन जो है वो खाली जिन तो नहीं होते, शयातीन तो इंसान भी होते हैं। तो अगर कोई उस्ताद बन गया लेकिन वो मुलहिद और बदअकीदा उस्ताद है तो फिर तो वो शैतान है ना, तो यानी आपने शैतान को अपना उस्ताद बनाया हुआ है, तो फिर आप गुमराह ही पाएंगे, ठीक है। चाहे वो उस्ताद कुरान क्यों ना पढ़ा रहा हो लेकिन चूंकि वो शैतान उस्ताद है तो वो कुरान पढ़ा करके अपने शागिर्दों को गुमराह कर लेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये है लाइव कनेक्शन ना, उस्ताद के साथ लाइव कनेक्शन है, किताब के साथ लाइव कनेक्शन नहीं है, उस्ताद के साथ लाइव कनेक्शन है, ठीक है। बहरहाल तो इसी पे बात हम मजीद कर सकते हैं लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से ये मुराद है कि हम ये बताना चाह रहे थे आज की क्लास के अंदर कि बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि इस मॉडल का हिस्सा बन जाते हैं या बन चुके हैं, राइट। ये उस्ताद शागिर्द वाला मॉडल, ये शेख और सालिक या सालिका वाला मॉडल, ठीक है ना। कि भाई लाइव टीचर, लाइव शेख से जो है ना, वो अब वो दीन को सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। यानी उस फेज से बाहर निकल चुके हैं, उस फेज को क्रॉस कर चुके हैं, जिस फेज में वो अपनी मनमर्जी से जो है वो दीन इधर से उधर से और जमादात से और नबातात से और जो है वो इधर उधर से जो है वो रैंडमली विंडो शॉपिंग के जरिए से दीन सीख रहे थे, वो दीन उनके लिए बहुत मुश्किल बन गया था, ठीक है ना। लेकिन वो उस फेज से आगे बढ़ गए और उन्होंने जो है वो बाकायदा इस मॉडल के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली, ठीक है ना, मॉडल में शमूलियत इख्तियार कर ली। यानी उन्होंने एक लाइव टीचर के साथ एक अपना इस्लाही ताल्लुक बना लिया, सीखने का ताल्लुक बना लिया। अब क्या करें, क्या अब जो है वो सारे मसले हल हो गए, अब जन्नत में पहुंच गए, नाउ यू हैव ऑलरेडी लैंडेड इन जन्ना, शेख साहब के साथ बैत कर ली है, शेख साहब के साथ इस्लाही ताल्लुक बना लिया है, अब आप जन्नत में पहुंच गए, मसले यानी जन्नत में पहुंचने का मतलब ये कि आप सारे मसले हल हो गए, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता कि अब सारे मसले हल हो गए, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप इस दुनिया के अंदर ही हैं, अभी भी इस दुनिया से अगली दुनिया में नहीं रवाना हुए हैं, ठीक है ना। जन्नत तो अगली दुनिया में होगी ना, वहां पर आजमाइशें नहीं होंगी, वहां पे जो है मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, लेकिन शेख से ताल्लुक बना करके अभी भी आप इसी दुनिया के अंदर ही हैं, ठीक है ना। तो मसले किधर खत्म हो गए, मसले तो नहीं खत्म हो सकते, क्योंकि हम दुनिया तो है मसाइलिस्तान, राइट, दुनिया तो है आजमाइशों की जगह, ठीक है। तो आप दुनिया का मामला तो भाई यही है, जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं ना, वो इस बात को जरा सोचा करें, जिनको बड़ी फिक्र पड़ी होती है ना हर वक्त दुनिया की, वो इस बात को सोचा करें कि दुनिया का मामला तो ये है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, फिर खजूर से गिरा किसी और चीज में अटका, फिर उससे गिरा किसी और चीज में अटका, ठीक है ना। ये दुनिया की हकीकत है, और इसी दुनिया से जो है ना हम मरे जाते हैं, इस दुनिया के पीछे इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत छोड़ने के लिए बिल्कुल हम कभी भी तैयार नहीं होते, कभी भी जो है ना वो हम आगे की फिक्र नहीं कर रहे होते, दुनिया की फिक्र, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की बातें, दुनिया की राइट जिक्र जिक्रकार सब कुछ दुनिया का। दुनिया की हकीकत क्या है, ये तो मसाइलिस्तान है, ये तो आजमाइशों की जगह है, एक आजमाइश से निकलते हैं दूसरी में, दूसरी से निकलते हैं तीसरी में, तीसरी से निकलते हैं चौथी में, ठीक है ना। तो ये तो नहीं इस दुनिया के अंदर रहते हुए खत्म हो सकती है, ठीक है। तो अब जब शेख से ताल्लुक बना लिया तो अब सारे मसले हल नहीं हो जाते, पिछले वाले मसले हल हो जाते हैं, अगले वाले मसले शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगले वाले मसलों में फिर क्या क्या मसले शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हम आपके सामने कहते रहते हैं अक्सर, शेख का सर खाना, ठीक है ना। तो पहले जो है ना वो अकेले हमारे साथ मसले थे, अब हम जो है वो शेख के लिए मसले बन जाते हैं, शेख के साथ जो है ना वो यानी शेख के लिए मसला बन जाते हैं, ठीक है। क्या मतलब कि अब जो है ना वो हम ऐसे ऐसे फिर मैसेज, आजकल तो व्हाट्सएप, शेख ऑन व्हाट्सएप, शेख ऑन व्हाट्सएप, ये ना काफिरों के, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुना, लेकिन कभी खुदा का शुक्र है कभी हमने इसका तजुर्बा नहीं किया, लेकिन हमने सुना है कि काफिर जो है ना ये वेस्टर्न ट्रेडिशन वाले, सिविलाइजेशन वाले, ये शराब को नहीं, यानी शराब इनके नज़दीक जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कीमती चीज़ है, जैसे जैसे एक ज़माने में हमारे नज़दीक जो है ना वो कोक और पेप्सी बहुत ज्यादा कीमती चीज़ होती थी ना, बचपन में किसी जगह फ्री का कोक और पेप्सी नजर आ जाता था ना, तो ऐसे जो है ना वो यानी खुश हो जाते थे कि जैसे पता नहीं जन्नत मिल गई है, ठीक है। तो शराब जो है ना ये इनके यहाँ बड़ी मरगूब चीज़ है, यूरोपियंस खुसूसन काफिरों के नज़दीक में, हिंदुओं के नज़दीक भी ऐसे ही। अच्छा, इनके यहाँ जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि बियर, बियर है ना शराब की एक किस्म, वो कहते हैं बियर ऑन टैप्स। क्या मतलब कि शराब जो है ना वो नलके में मिल रही है, शराब जो है वो नलके में मिल रही है। क्या मतलब कि जिस तरह से पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान में तो नलका खोलें तो पानी कम आता है, ठीक है, ये पता नहीं अब आता होगा, पहले तो नहीं आता था, तो नलका खोलें तो पानी आ जाता है, आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, हर जगह आपको पानी की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ठीक है, तो बस नलका खोला पानी आ गया, सही है। तो उसी तरीके से उनकी जो है ना वो एक यानी एक जैसे कि ड्रीम कम ट्रू है, वो ये है कि बियर ऑन टैप्स, राइट, एल्कोहल ऑन टैप्स, के नलका खोला उधर से जो है ना वो शराब निकलनी शुरू हो गई। तो ये उनके उनका ड्रीम कम ट्रू है ये उनके लिए, ठीक है। आजकल के जमाने में शेख ऑन व्हाट्सएप, राइट। पहले शेख से मिलने के लिए जो है ना लोग सफर किया करते थे, सामान उठा करके जाया करते थे, और जो है वो खानकाह के अंदर जो है वो आजमाइशें उठाते थे, परेशानियां उठाते थे, है ना। फिर शेख से जो है वो थोड़ा सा टाइम मिलता था। अब तो माशाल्लाह हजरत भी हमारे जो है वो SMS पे कुछ लोगों को जवाब दे दिया करते थे, तो शेख ऑन SMS का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे हजरत के साथ शुरू हुआ, और अब जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर शेख। तो अब वो व्हाट्सएप के ऊपर जब शेख आ जाएं तो फिर व्हाट्सएप के अंदर तो आपको एक पाई भी नहीं देनी पड़ती, फ्री है सारा का सारा, ठीक है ना। और आपके फोन के ऊपर जो है वो सारी के सारी एप्लीकेशंस के अंदर एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप भी है। तो अब जो है ना वो शेख साहब की कमबख्ती आ जाती है। इसके बाद जब हम मॉडल के अंदर दाखिल हो जाते हैं ना, अब शेख साहब की कमबख्ती, यानी अब वो जो है वो पढ़ते रहे आपके मैसेजेस, अब जो है वो मैसेजेस के जवाब देने की कोशिश करते रहे हर वक्त, ठीक है। तो ये जो है ना ये कोई तरीका नहीं है इससे शेख साहब के लिए। तो बहरहाल वो भी हर चीज का जवाब देंगे नहीं, बिलाखिर उनकी भी बस हो जाएगी, वो आपको जवाब देना बंद कर देंगे। लेकिन आपका तो नुकसान उसके अंदर ज्यादा है ना, शेख साहब का तो थोड़ा नुकसान है, आपका तो ज्यादा नुकसान है ना, कि ये तो आपने इस सिस्टम को अब्यूज करना शुरू कर दिया, राइट। तो इस तरीके से तो आप दीन नहीं सीखेंगे कि हाँ भाई मॉडल में तो हम आ गए हैं, अब जो है ना वो हम यानी है ना इस तरह की बातें करते हैं कि कुछ लोग जो हमें सुनते हैं ना तो ये समझना शुरू करते हैं, लगता है कि हम तो बाथरूम भी जो है ना वो शेख साहब से पूछ करके जाते हैं। लिटरली मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हमें किसी ने कहा कि आप तो लगता है कि बाथरूम भी अपने शेख से पूछ करके ही जाते होंगे, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपने लोगों को ऐसा इंप्रेशन क्यों दिया हुआ है कि हम तो हर चीज अपने शेख से पूछ के करते हैं, हम तो हर चीज जो है ना वो शेख से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा आपने इंप्रेशन लोगों को दिया हुआ है, इसी वजह से तो लोग अब ये आपको मजाक उड़ा रहे हैं, आपके आपके इस इस्लाही ताल्लुक का, लोग आपके इस्लाही ताल्लुक का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? क्योंकि यू गेव दैट इंप्रेशन टू दैम। भाई अगर आप पूछ करके सीख करके किसी दीन पर अमल कर रहे हैं तो आप इसको पूरी दुनिया के सामने जतला क्यों रहे हैं, राइट। ये तो जतलाना है ना कि भाई मैं तो हर चीज पूछ के करती हूँ, मैं तो हर चीज पूछ के करता हूँ। अल्लाह के बंदे पूछ के करना है तो तुम्हारे अपने फायदे के लिए, जो पूछने की चीज है उसको पूछो ताकि दीन सीखो, दीन की हिदायत हासिल करो, लेकिन दूसरों को बताने की क्या जरूरत। तो इस किस्म की हरकतें भी हो रही होती हैं, और फिर जो है ना वो ऐसे ऐसे सवाल लिख रहे होते हैं जी, बस आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, कह कह करके थक गए, 10 साल 12 साल कह कह करके थक गए। आपने अब तक तो किया नहीं, अब आप जो है वो बड़ा एहसान जतलाने की, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, अब सारे काम छोड़ करके आपको जो है वो कहने में लग जाए, राइट। अब आपको बताएं जी आपको ऐसे चलना चाहिए, इधर मुड़ना चाहिए, फिर उधर मुड़ना चाहिए, फिर ऐसे सीधा जाना चाहिए, फिर ऐसे जैसे वो पुराने जमाने में जब ये गूगल मैप्स वगैरह नहीं होता था तो उसमें जो है ना वो ऐसे ही लोगों को रास्ता बताया कि आप जो है वो जहाँ पे वो बिलबोर्ड बोर्ड नजर आए वहां से सज्जे मुड़ जाइएगा, पता नहीं सज्जे राइट को कहते हैं या खब्बे राइट को कहते हैं, आप उधर से वो बोर्ड नजर आएगा वहां से सीधे हाथ मुड़ जाइएगा, फिर वहां पे पान का एक खोखा नजर आएगा, फिर वहां से आप जो है वो उल्टे मुड़ जाइएगा, फिर उसके बाद जो है वो मोची की दुकान नजर आएगी, मोची की दुकान के पीछे जो लाल टीन वाला घर है ना वो उधर जा आपको जाना है, ऐसे जो है वो डायरेक्शन बताया करते थे, ठीक है। तो अब शेख जो है ना अब आपको जिंदगी में सिखाएं कि अब आपने इधर दाएं मुड़ना है, उधर आपने बाएं मुड़ना है, उधर आपने सीधे जाना है, उधर जो है वो फलानी निशानी को देखना है, उधर फलानी निशानी को देखना है, इस तरीके से जो है वो आप अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे मैसेजेस लिखते हैं कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है। या जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म के कि जी आपने कहा था कि जी जो सीख के करना चाहिए बात, तो अब जो है ना वो मैं क्लास में हूं तो, लेकिन क्या मुझे ये क्लास लेनी चाहिए है? मैंने आपसे पूछा नहीं था कि मुझे क्लास लेनी चाहिए क्लास नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि कहीं मेरा नफ्स मुझे गुमराह ना कर दे, तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे ये क्लास लेनी चाहिए। भाई अल्लाह की बंदी आपको क्लास में जब ऐड किया हुआ है, राइट, तो अब क्या क्लास के अंदर अगर 700 लोग हैं तो अब 700 लोग जो है वो शेख से पूछेंगे कि जी मुझे क्लास लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और वो जो है वो हर एक को बताएगा कि जी हाँ आपको क्लास लेनी चाहिए, आपको क्लास ली लेनी चाहिए। कुछ तो सोचा करें यार, कुछ तो सोचा करें यार, किसी को इतना फालतू समझ लेना ये तो ज्यादती नहीं है भाई। आपको क्लास में ऐड किया हुआ है, आप क्लास में मौजूद हैं, अब ये किस किस्म का सवाल है कि मैं आपसे पूछ करके क्लास लूंगी, वरना जो है शैतान गुमराह कर देगा मुझे। अकल अल्लाह ताला ने किस काम के लिए दी थी? ठीक है, और फिर इस किस्म के सवाल कि जी मुझे बताएं कि मैं क्या गलती कर रही हूं। क्या मतलब मैं आपको बताऊं कि आप क्या गलती कर रही हैं? मैं कोई खुदा हूं भाई? या जो भी शेख हैं आपके, जो भी आपके जिनके साथ इस्लाही ताल्लुक है, वो क्या है, खुदा हैं कि जिनके पास इल्मुल गैब मौजूद है, जिनके पास राइट, जो कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, आप क्या सही कर रही हैं, क्या गलत कर रही हैं, उनको सब कुछ पता है। ये किसके पास ये वाली कुदरत है? ये अल्लाह के पास है ना। किसी इंसान के पास ये कुदरत हो सकती है? चाहे वो अल्लाह का नबी क्यों ना हो, क्या उसके पास ये वाली कुदरत हो सकती है कि आप मुझे बताएं मैं क्या गलत कर रही हूं? तो शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाना, सिस्टम में आ जाना, इसका मतलब ये नहीं है, हरगिज ये इसका मतलब नहीं है, शेख को खुदा नहीं समझ लिया करें। ये जो शेख को खुदा समझना शुरू कर देते हैं ना, तो इसके बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं, इसके बहुत बड़े बड़े जो है वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके। एक तो यही होता है कि शेख के अंदर ऐसी कोई ऐसी खुदाई ताकतें हैं कि वो हर एक को जो है ना वो एक साथ सुन भी सकते हैं और हर एक को एक साथ जवाब भी दे सकते हैं। ये पावर्स जो है ये सिर्फ अल्लाह के पास है कि वो हर एक को सुनता है और हर एक को जो है वो जवाब देता है, और उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं आती। ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात ऐसा कर सकती। या ये कि समझ लिया कि शेख को सब कुछ पता है, मेरी जात के बारे में पता है, मेरे अहवाल के बारे में पता है, मेरी मेरी दिन भर के मामूलात के बारे में पता है राइट, मेरी अच्छाइयों के बारे में पता है, मेरी जो है वो खामियों के बारे में पता है। नहीं, किसी भी शेख को ये सब नहीं पता, ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत है, सिर्फ अल्लाह ताला की ये सिफत है, उसको ये बातें पता है, शेख को नहीं पता। कितना ही बड़ा दुनिया का पीर क्यों ना बन जाए वो, उसको नहीं पता ये सारी बातें, ठीक है ना। और फिर तीसरा बहुत बड़ा मसला है, तो बहुत सारे मसले लेकिन तीन अभी जहन में आते हैं। तीसरा बड़ा मसला कि जिस तरह अल्लाह जो है वो सुबहाना हुआ ताला है राइट, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं है, कोई खामी नहीं है, हर चीज जो वो परफेक्टली करता है। तो अब जब शेख को जो है वो खुदा जैसा समझना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि शेख से भी जो है वो ऐसी एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी कि शेख जो है वो परफेक्शन, बस उसने तो हर चीज सही करनी है और परफेक्ट करनी है, और जो है ना वो किसी किस्म का उसके अंदर कमी बेशी कोताही वगैरह हो ही नहीं सकती। तो अब क्या होगा, शेख साहब तो ऐसे नहीं है, शेख साहब तो खुदा नहीं है, वो तो परफेक्ट नहीं है, वो सुबहाना हुआ ताला तो नहीं है। तो अब जब हमने ये उनको ये मुतवक्के उनके साथ ये तवक्कात रख ली, तो जब उनकी खामियां सामने आएंगी, उनकी इंसानियत, उनकी बशरियत जब हमारे सामने खुलेगी, जो कि वो बशर ही हैं, जब खुलेगी तो फिर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताएं क्या हो जाएंगे फिर उसके बाद? फिर क्या होगा जब उनकी बशरियत हमारे सामने आएगी, तो फिर क्या होगा? बदगुमान हो जाएंगे, बदजन हो जाएंगे। और दूसरा भी ये काम होता है, दूसरा काम ये होता है कि फिर शैतान जो है ना, जो कि शेख का दुश्मन, शेख का दूसरी साइड वाले हैं, मनफी शेख जिसको कहते हैं, बातिल शेख, वो फिर उछलना कूदना शुरू होता है, वो फिर खुशियां मनाता है, देखो कैसा जबरदस्त इसको बदगुमान किया है मैंने शेख से अपने, क्या जबरदस्त बदगुमान हुआ है अपने शेख से, खता किसकी थी, गलती किसकी थी, शेख को खुदा समझना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये नहीं है। बेशक जो है वो हम एक आसमान से गिरे, लेकिन जो खजूर में अटके हैं ना अभी नेक्स्ट आजमाइश के अंदर, तो इस आजमाइश में कामयाबी का तरीका अल्लाह करीम ने हमें अपने कुरान मजीद के अंदर बतला दिया। हमारा करीम अल्लाह वो हमें मुसीबतों में डालता भी है आजमाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में उसने हमें भेजा ही इस काम के लिए, आजमाइश के लिए। लेकिन साथ साथ पिछली क्लास में बात हुई थी ना, दो क्लासेस पहले, सूरह बनी इसराइल की, कि इम्तिहानी पर्चा भी वही बनाता है, उस पर्चे को हल करने का तरीका भी वही बताता है। ठीक है, उसने क्या बताया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उसवतुन हसन, कि मेरे रसूल के इस बनाए हुए मॉडल, राइट, ये जो मॉडल मेरे रसूल ने बनाया है ना, इसमें तुम्हारे लिए बेहतरीन रहनुमाई है। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उसवतुन हसना, ठीक है ना, इसका यही मफहूम इस आयत का होता है कि इस मॉडल के अंदर तुम्हारे लिए रहनुमाई है, तुम्हारे लिए कामयाबी है, लेकिन आगे शराइत बता दी कि इससे कामयाबी, इससे फायदा वही हासिल कर सकता है, लिमन काना यरजुल्लाह, वो जो कि अल्लाह से उम्मीद रखे, ठीक है ना, यानी उसकी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता हो, रसूलुल्लाह से वाबस्ता ना हो, अल्लाह से वाबस्ता हो, पीर साहब से, उस्ताद साहब से, शेख साहब से वाबस्ता ना हो, अल्लाह से वाबस्ता हो, ठीक है ना, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, और उसको असल में तो आखिरत की कामयाबी की गर्ज हो, असल में तो वो दुनिया की कामयाबी नहीं, आखिरत की, यानी दुनिया उसके सामने जो है ना वो ही जो वो इस मॉडल में आ रहा है अपनी आखिरत बनाने के लिए, राइट, वल यौमल आखिर, वह जकर अल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करता हो। क्या मतलब कसरत से, तस्बीहें फेरता रहता हो हर वक्त, या टकरे मारता रहता हो हर वक्त, या चक्करे लगाता रहता हो हर वक्त, राइट, कितना रश है इस वक्त जो है वो माशाल्लाह हरम के अंदर, तो ये है जिक्र अल्लाह कसीरा, नहीं, जिक्र अल्लाह कसीरा का मतलब कि ये अल्लाह से गाफिल नहीं होता, इसकी निगाहें अल्लाह पे जमी हुई होती हैं, राइट, ये अल्लाह को याद रखता है, ठीक है, तो ये शराइत हैं इस मॉडल से फायदा उठाने के लिए, ये शराइत हैं इस मॉडल से फायदा उठाने के लिए। अगर हमारी नीयतें जो है वो कुछ और हैं, हम दुनिया को अपना मकसद बनाए हुए हैं, राइट, हम आखिरत को मकसद नहीं बनाए हुए, दुनिया को मकसद बनाए हुए हैं, हम जो है वो दुनिया वालों में गुम रहते हैं, अल्लाह को याद रखने के बजाय हर वक्त दुनिया वालों को याद रखना चाहते हैं, तो फिर इस मॉडल से भी हमें फायदा नहीं होगा, ठीक है, बल्कि क्या होगा कि हम इसी मॉडल के लिए फितना बन जाएंगे, जैसे पीछे बात हुई ना, शेख के लिए फितना बन जाते हैं, शेख ऑन टैप्स, जिस तरह बियर ऑन टैप्स, तो शेख ऑन टैप्स, शेख ऑन व्हाट्सएप, अब शेख साहब के लिए मुसीबत बन गए, तो हम इस मॉडल के लिए फितना, यानी मॉडल के अंदर जो शेख वाली फिगर है उसके लिए फितना बन गए, या ये कि फिर क्या करते हैं, क्योंकि दुनिया असल में हमारा मकसूद है, हम आखिरत तो नहीं कमाना चाहते, आखिरत की तो फिक्र नहीं है, दुनिया की फिक्र है, दुनिया को ठीक कर दें या दुनिया के अंदर अपना कुछ हिस्सा बना लें, ठीक है ना, तो दुनिया दुनिया दुनिया, बहुत लोग जो होते हैं ना उनको शैतान इस तरह से भी दुनिया की मोहब्बत में लगाता है कि दुनिया खराब है तुम इसको ठीक करो, दुनिया खराब हो चुकी है, दुनिया गुमराह हो चुकी है, तुम इसको ठीक करो, राइट, तो वो ऐसा दुनिया को ठीक करने में लगते हैं कि आखिरत जो है ना फिर साइड पे हो जाती है, अल्लाह जो है ना वो बिल्कुल ही साइड पे हो जाता है, क्योंकि दुनिया को ठीक करने का काम ये तो अल्लाह ताला ने आपके जिम्मे नहीं लगाया था, ये तो काम अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लेकर के रखा हुआ है, आपको जब शैतान ने दुनिया ठीक करने के ऊपर लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि उसने दरअसल आपको अल्लाह से गाफिल कर दिया है, उसने दरअसल आपको अल्लाह से गाफिल कर दिया है, और ठीक करने के बहाने उसने जो है ना वो आपको दुनिया तलबी के ऊपर लगा दिया, हमको दुनिया तलबी के ऊपर लगा दिया, अपने आप को हम उससे एग्जेम्प्ट नहीं करते, ठीक है, तो हम इस मॉडल के लिए फितना बन जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि अब जो है ना वो तोड़ जोड़ के सियासतें चलती हैं, फिर दीनी निजाम के अंदर, जैसे मदरसा है, ठीक है ना, या खानकाह है, वो किसी शेख ने जो है वो मेहनतों से बनाई है, या किसी आलिम साहब ने मेहनतों से जो है मदरसा बनाया है, अब इस मदरसे के अंदर जो जुड़े हुए लोग हैं, जब उनके हुदूद अरबा ठीक नहीं है, उनकी फिक्र ठीक नहीं है, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़कर अल्लाह कसीरा, ये मामलात नहीं है, तो अब वो उसी मदरसे के लिए फितना बन जाते हैं, वो उसी खानकाह के लिए फितना बन जाते हैं, जोड़ तोड़ के सियासतें शुरू हो जाती हैं इसके अंदर, अपनी जमातें बनाएंगे, अपना जो है वो लोगों को शेख से बदगुमान करेंगे, लोगों को जो है वो सिस्टम से बदगुमान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, राइट? तो ये भी हो जाता है, एक ये शेख के लिए मुसीबत की हर चीज जो है ना, आप हमें बताएं क्या करना है, आप मुझे बताएं क्या मेरी गलती है, आप मुझे बताएं कि मुझे फलानी चीज की इजाजत है कि मुझे फलानी चीज की इजाजत नहीं, इस तरीके से वो शेख का सर खाते रहते हैं, या ये कि शेख का सर नहीं खा रहे, अब जो है ना वो अपना फितना बना रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ की सियासत जिस तरह की मशहूर होती है पाकिस्तानी सियासत, ठीक है? तो ये तो नहीं था ना, ये तो आप फितना बन गए ना सिस्टम के लिए, ये तो आप नुकसान का सबब बन गए ना सिस्टम के लिए। तो सिस्टम में आने के बाद भी आजमाइशें खत्म नहीं होती, आजमाइशें तो मरने के बाद खत्म होंगी, उन लोगों की जो के इस दुनिया के अंदर नेक बन करके रहे थे, उनकी आजमाइशें मरने के बाद खत्म हो जाएंगी, ठीक है? तो अब हम कैसे फायदा उठाएं, हम फायदा कैसे उठाएं, जो सिस्टम में हम आ गए हैं, तो उसके लिए नीयत को दुरुस्त करना, यानी नीयत हो लिमन कान यरजुल्लाह वल्यौमल आखिर, ये हो नीयत, अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा, अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा, यरजुल्लाह वल्यौमल आखिर, अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा, ये हमारी नीयत हो, ठीक है ना? ये शर्त है, इन्नमल आमाल बिन नियात। और अमल फिर क्या हो, अमल में सबसे पहले बता दिया जकर अल्लाह कसीरा, अल्लाह को याद रखो, राइट? क्योंकि अल्लाह जो है ना, ये अल्लाह ताला ने खुद तुम्हें पैदा किया है अपनी पहचान के साथ, तुम्हारी फितरत के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी पहचान रखी हुई है, तो अल्लाह को याद करना और याद रखना जो है ये, इसके लिए तुम्हें कोई बहुत एक्वायर्ड इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है, अपनी निगाह अल्लाह पे रखो, अल्लाह को अपना मकसूद बनाओ, ठीक है ना? तो करने के कामों में सबसे पहला काम अल्लाह ताला को याद रखो, ठीक है? और फिर उसके बाद जो ये अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब करते हुए फायदा हासिल करने का तरीका बताया, जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, अल्लाह ताला सूरह अनफाल की इन आयात के अंदर जो कि आपके सामने शेयर करवाई है, उसमें क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, काफिरों को नहीं मुखातिब कर रहे हैं, दीन से दूर लोगों को जो कि ईमान का पता नहीं उनकी ईमान सलामत भी है कि नहीं, उन लोगों को मुखातिब नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईमान वालों को, मानने वालों को मुखातिब कर रहे हैं, ठीक है? अतीउल्लाह व रसूलहू, तुमको जो हुक्म दिया जा रहा है ना, उस हुक्म की अताअत करो, मानो उन बातों को, ठीक है? उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करो, अती अताअत। और आगे फरमाते हैं वला तवल्लव अनहु, और तुम पीठ ना फेरो इन दोनों से, ठीक है, रसूल से, बल्कि रसूलुह, रसूलहू उसका रसूल, वला तवल्लव अनहुम, अनहु अनहुम नहीं फरमाया, अनहु तुम उससे पीठ मत फेरो, एराज मत करो, वह अंतुम तस्मऊन, इस हाल में कि वो तुम्हें कोई बात समझा रहा है, कोई बात तुम्हें सुना रहा है, तुम सुन रहे हो लेकिन तुम जो है वो पीठ फेर रहे हो, यानी तुम पे अटेंशन नहीं कर रहे, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट फोकसिंग, यू आर नॉट ट्राइंग टू लिसन, ऐसे मत करो तुम। आगे फरमाया वला तकूनू कल्लजीना, उन लोगों की तरह से मत हो जाना, कालू समिअना, कहते हैं कि हम तो सुनते हैं, जैसे सारे के सारे क्लास में ना, अब मैं पूछूं किसी से कि जी आप सुन रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल हम सुन रहे हैं, हम सुनने के लिए तो इस क्लास के अंदर आए हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकूनू कल्लजीना, उन लोगों की तरह मत हो जाना, कालू समिअना, कहते तो हैं कि हम सुनते हैं, वहुम ला यस्मऊन, हालांकि वो नहीं सुनते हैं, हालांकि वो नहीं सुन रहे हैं, क्या मतलब, कानों से आवाजें, फ्रीक्वेंसीज, साउंड वेव्स अंदर जा रही हैं, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इट, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट, वो सुन नहीं रहे असल में, मुतवज्जे नहीं है वो इस बात जो कि उनके सामने की जा रही है। इन लोगों की सिफत बयान करते हैं, इन लोगों की बुराई बयान करते हैं, इन शर्रत दवाब अल्लाह, अल्लाह के नजदीक जो जमीन पर चलने फिरने वाली मखलूक है ना, उनमें सबसे बुरी मखलूक ये लोग हैं। कौन लोग? अस्सुम्मु अल बुकमु, वो जो के बहरे बने हुए हैं, हालांकि अल्लाह ने उनको बहरा नहीं पैदा किया था, उनके कानों को फंक्शनल बनाया था, सुनने की सलाहियत दी थी उनकी, लेकिन वो नहीं सुनते, फोकस नहीं करते, तवज्जो नहीं देते। असुम्मु, और फिर फरमाया अल बुक्म, ठीक है, बुक्म का मतलब गूंगे। तो भाई गूंगे का क्या ताल्लुक है सुनने से, यहां पर तो सुनने की बात हो रही थी, गूंगे का क्यों जिक्र किया कि ये गूंगे लोग हैं, बदतरीन अल्लाह ताला की मखलूक में से, क्योंकि जब तक सुनेगा नहीं तवज्जो से, उस वक्त तक उसको किसी को समझा भी नहीं सकेगा, बात भी नहीं कर सकेगा, दावत और तबलीग का काम भी नहीं कर सकेगा, बलागुल मुबीन का काम भी नहीं कर सकेगा, इसलिए कि खुद उसने जो है वो सुना नहीं है, खुद उसने तवज्जो नहीं दी है। अल्लज़ीना ला याकिलून, ये वो लोग हैं जो कि अपनी अकल को इस काम में इस्तेमाल नहीं करते, बाकी सारी दुनिया की चीजों में अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी सो कॉल्ड जो है वो एजुकेशन के अंदर बड़ी अपनी अकलें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने में अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते, इस किस्म की बातें करते हैं, जी आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, अब तक तो किया नहीं, सुनते तो आप हैं नहीं, इतना कुछ तो खोल खोल के आपको सालों से बता रहे हैं, अब आप कहते हैं कि अब हम आपको बताएं कि खब्बे मुड़ना है, फिर सज्जे मुड़ना है, फिर पान की खोखे को देखना है, फिर इधर देखना है, फिर उधर देखना है, तब जो है ना शायद आप सुन लेंगे हमारी बात, फिर जो है वो आप सही रास्ते के ऊपर चल पड़ेंगे। इस किस्म की बातें करते हैं, ठीक है ना। तो जो इस्लाह की बात है, आखरत की बात है, अखलाकियात की बात है, मिसाली मर्द, हमारे यहां मिसाली मर्द हजरत ने तो अपने बयानात किए, हमने उनके ऊपर पता नहीं 10 गुना ज्यादा, और ये भी नहीं कि लोगों को ओवरलोड कर दिया, हफ्ते में सिर्फ एक क्लास होती थी 45 मिनट की, और फिर एक हफ्ते का गैप आता था, फिर उसके बाद 45 मिनट की सिर्फ एक क्लास होती थी, क्या ये ओवरलोड करना कहलाएगा? क्या ये आपने इतना ओवरलोड कर दिया मिसाली मर्द को, क्या उसको गौर से सुन नहीं सकते थे, क्या उसके ऊपर अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते थे कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं? मिसाली औरत, मिसाली बहन भी, मिसाली माँ भी, मिसाली सास भी, मिसाली बहू भी, मिसाली माँ भी, मिसाली बेटी भी, एक एक चीज के ऊपर जो है वो महीनों इसी तरीके से कि हफ्ते में सिर्फ 45 मिनट की एक क्लास, कैसे कैसे उसके अंदर पॉइंट्स हजरत ने लिखे, और फिर इस आजिज ने अल्लाह की तौफीक से मजीद खोल खोल करके बयान किए, क्या मुश्किल था कि मिसाली औरतें, आप औरतें जो है वो उन बातों को सुन नहीं सकती थी, और अपने आप को उनके ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती थी कि मेरी क्या गलती है, मैं क्या कहां पे जो है वो गलती कर रहा हूं, क्या के अंदर उसके अंदर कमी बेशी हो रही है मुझसे, नहीं सुनते, कहते हैं कि जी कालू समयना, हम तो जी बड़ा सुनते हैं, वहुम ला यस्माउन, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, ये कौन लोग हैं? शर्रद दवाब इंद अल्लाह, अल्लाह के नजदीक ये बदतरीन मखलूक हैं, ये क्यों क्यों हम ऐसा रवैया रखे हुए हैं इस दीन के साथ? वलो अलिम अल्लाह फीहिम खैरन, अल्लाह ताला जो है ना वो बिल्कुल, यानी इतना खौफनाक बात है ये, इतनी खौफनाक बात है ये हमारे लिए, जो इस कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बता दी, वलो अलिम अल्लाहु फीहिम खैरा, अगर अल्लाह ताला हमारे अंदर कोई खैर जानते, यानी अल्लाह का इल्म अजली और इल्म अबदी वो हमारे बारे में सब जानते हैं, अगर हमारे अंदर कोई खैर होती, इसका मतलब क्या बनता है कि अगर हमारे अंदर कोई खैर होती, ला अस्माहुम, तो अल्लाह हमें सुनने की तौफीक दे देते, खैर है इंशाल्लाह हमारे अंदर, तौबा करने की जरूरत है, अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा, और ये जो लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ प्रायोरिटीज का जो गुनाह है ना, इससे तौबा करने की जरूरत है, अल्लाह ताला हमें सुनने की तौफीक दे देंगे। ये तो कुफार के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ना करे हम में से कोई जो है वो काफिरों में से हो जाए, ये जिसको कि अल्लाह ताला सुनने की तौफीक नहीं देना चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि इनके अंदर कोई खैर नहीं, वलो अस्माहुम लतवल्लौ वहुम मुअरिदून, और अगर अल्लाह ताला इनको सुनने की तौफीक दे देना, तो ये सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी, ये जो है वो एराजी कर रहे होते और पीठ ही फेर रहे होते। तो ये है हमारा मसला, हम सुनते नहीं है। और रीजंस क्या बनती हैं उसकी? हमारी नीयत सही नहीं होती है, हम कुछ और नीयतें लेकर के आए होते हैं। या तो हम इस्लाह की नीयत से आए होते हैं ना, तो हम अपनी इस्लाह की नीयत से नहीं आए होते, हम किसी दूसरे को ठीक करने की नीयत से आए होते हैं कि जरा मैं मवाद इकट्ठा करूं ताकि मैं दूसरों को ठीक करूं, दुनिया को ठीक करूं या अपने दुनिया वालों को ठीक करूं। अब राइट, अपनी इस्लाह की नीयत से नहीं आए होते, या ये कि ओवरऑल इन जनरल हमारी जो है वो बस दुनियावी नीयतें होती हैं। ठीक है, और दूसरा मसला कि हम डिस्ट्रैक्टेड इतना रहते हैं, इतना इधर भी जाए, विंडो शॉपिंग है, शॉपिंग करनी वरनी कोई नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए खरीदना नहीं है, कभी इस दुकान में कभी उस दुकान में कभी फलाने जगह पे कभी फलाने जगह पे, यही हमारा दीन के साथ मामला है, फलाने शेख साहब वो आ गए, अच्छा भागे भागे जाने, दूसरे शेख साहब उधर आ गए, फिर भागे भागे जाने, तीसरे शेख साहब इधर आ गए, फिर फलाने को सुन रहे हैं, फिर फलाने को सुन रहे हैं, फलाने को सुन रहे हैं। राइट, इसी के अंदर जो है पहले जो है वो जो नेक लोग थे पहले जो है वो सही अकीदे वाले मशायख को सुनते थे, अब हमारी इसी कमजोरी को शैतान ने गेज कर लिया कि देखो ये जो है ना हर एक को सुनते हैं ना, अब उसने बीच बीच में ऐसे लोगों को भी इंसर्ट करना शुरू कर दिया जिनका अकीदा ही खराब है, क्योंकि सुनने की बीमारी पड़ी हुई थी ना लोगों को, डिस्ट्रैक्टेड रहने की बीमारी हमारे अंदर मौजूद थी, अब उसने इस बीमारी को कैपिटलाइज किया और ऐसे ऐसे लोगों को इंसर्ट किया कि जिनका अकीदा ही खराब है, जिनका कॉन्सेप्ट ही खराब है, जिनका दीन ही खराब है। लेकिन रीजन क्या बनी कि हम ऐसे लोगों को सुनना शुरू हो गए? क्योंकि हमारी डिस्ट्रैक्टेड रहने की जो है ना वो आदत पड़ गई थी। और तीसरी रीजन क्या होती है? पहली रीजन नीयत की खराबी, दूसरी रीजन हमारे इस एटीट्यूड की खराबी, राइट, कि हम फोकस जो है ना वो नहीं रहते, हम हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और तीसरी जो रीजन बनती है वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो सनद याफ्ता होते हैं, राइट, जिन्होंने जो है ना वो दुपट्टा पोशियां करवाई हुई होती हैं या उन्होंने इसनाद ली हुई होती हैं, राइट, उनकी रीजन ये बनती है कि वो पहले से अपने नजरियात बना करके आए हुए होते हैं, पहले से अपने जो है ना वो भरा हुआ होता है उनके अंदर, वो समझते हैं हमारा हम बहुत भरे हुए हैं, हमें सब कुछ पता है। अब वो सुन रहे होते हैं लेकिन इम्तिहानी नजर से सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो उस्ताद होते हैं असल में पढ़ लिख करके आए होते हैं ना, सनद वनद लेकर के आए हुए होते हैं, तो अब जो है ना वो अपने आप को उस्ताद समझ रहे होते हैं, तो अब जो वो सुन रहे होते हैं ना तो वो भी उस्तादी की नीयत से सुन रहे होते हैं, ए? ये सही बोला इन्होंने, ये गलत बोला इन्होंने, ये सही बोला इन्होंने, ये गलत बोला इन्होंने, ठीक है ना, तेरी हर नजर मेरा इम्तिहान, मेरी हर नजर तेरी मुंतजर, तेरी हर नजर मेरा इम्तिहान। हमारे हजरत भी इसको पढ़ा करते थे क्योंकि वो भी ऐसे ही थे, इंजीनियर साहब हमारे हजरत क्या है, इंजीनियर साहब, सनद उन्होंने इंजीनियरिंग की ली थी, फिर जो है वो दीन की इस्लाह की मेहनत शुरू करी, तो अब जो है ना बहुत सारे आते हैं इम्तिहान लेने के लिए। ठीक है, तो ये है मसला। अब खवातीन के लिए एक आखिरी बात है, साजिश ने लिख के रखी हुई थी कि आखिर में जो है ना वो भी जरा सा एक्सप्लेन कर देंगे, माजरत के साथ के थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो गया है ऑलरेडी। तो खवातीन का ना एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह के नबी ने उनको जो नाकसुल अकल कहा है ना वो किस वजह से कहा है, अल्लाह के नबी ने यानी जिसने खवातीन को बनाया, जो मैन्यू जो क्रिएटर है खवातीन का, सिर्फ मर्दों का तो क्रिएटर नहीं है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने मर्दों को भी बनाया, अल्लाह ताला ने औरतों को भी बनाया, तो उसके रसूल ही ने बताया ना कि अल्लाह ताला ने ये बताया, जैसे हमारे एक दोस्त हैं कहते हैं मैं बनाया, ठीक है, तो रसूल क्या कहते हैं, अल्लाह ने बताया, ठीक है, तो अल्लाह ने बताया कि भाई औरतें जो है वो नाकसुल अकल है, तो औरतों को ये बात जो है ना वो समझ में नहीं आती, मानती नहीं है इस बात को कि नाकसुल अकल का मतलब जो है ना वो क्या है, उनको जो बात समझ में नहीं आ रही होती है ना तो कहती हैं बड़ा ना एतराजन कहती हैं कि जी मैं तो नाकसुल अकल हूं ना, इस वजह से मुझे बात समझ में नहीं आती, यानी नाउज बिल्ला अल्लाह के रसूल एक बात बता रहे हैं, अब आपको जो है वो एतराज है इस बात के ऊपर कि जी नाकसुल अकल, यानी दिल मुतमईन नहीं है इस बात के ऊपर कि अल्लाह के रसूल ने नाकसुल अकल बताया है, ठीक है ना, अब उसके ऊपर जो है वो एतराज, ठीक है, तो भाई नाकसुल अकल का मतलब ही अभी तक आपके समझ में नहीं आया, और वजह भी उसकी यही है कि सुनती नहीं है, या प्री मेडिटेटेड जो है ना वो अजम्पशंस दिमाग के अंदर जो है भरे हुए हैं, तो शागिर्द तो बनकर के नहीं आए अभी तक, अभी तक तो उस्ताद बने हुए हैं, तो इसी वजह से सुनते नहीं है, है? ना सुनने की तीन रीजन बताई, नीयत खराब होती है, या ये कि डिस्ट्रैक्टेड होते हैं हर वक्त, ठीक है ना, तो इस वजह से जब कुछ भी सुन सुन नहीं रहे होते, किसी एक की भी जो है वो सही तरह से नहीं सुन रहे होते क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड है। और तीसरी रीजन क्या होती है कि सनद याफ्ता होते हैं, तो अब जो है ना वो सीखने के लिए नहीं आए होते बल्कि चेक करने के लिए आए होते हैं कि कौन सी बात सही कर रहे हैं, कौन सी बात गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नाकसुल अकल का यह मतलब नहीं था, नाकसुल अकल का मतलब यह था कि अल्लाह ताला ने जज्बात दिए हैं उनको, तो जज्बात की वजह से जो है ना वो जब मगलूब हो जाती हैं जज्बात से, तो फिर समझने के बावजूद, जानने के बावजूद, इल्म रखने के बावजूद सही फैसला नहीं कर पाती हैं, सही जजमेंट नहीं दे पाती हैं। सब कुछ जानती हैं, सब कुछ समझती हैं, लेकिन जब गुस्सा आएगा सब ऐसे एज इफ कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझा था। क्या मसला होता है? असल मसला सिर्फ गुस्सा होता है, मغلوب हो जाती है गुस्से से। उसी तरीके से मोहब्बत, ये भी एक जज्बा है। मोहब्बत हो जाए ऐसी मغلوب के सब पता है कि ये बात गलत है, इल्म हासिल किया हुआ है कि ये बात गलत है, लेकिन नहीं, क्योंकि मोहब्बत हो गई अब सही है। तो ये जो जज्बात से मकलूबियत है ना, अल्लाह ताला ने इसकी वजह से जो है वो नाकसुल अकल, इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि औरत जो है वो इमाम नहीं बन सकती, जिस कौम की इमाम औरत बन जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। क्यों? ये नहीं कि औरत साहिबा जो है वो आलमा नहीं बन सकती है, वो जो है वो पीएचडी नहीं कर सकती, और वो जो है वो उनको मैथ समझ में नहीं आएगी, और इंजीनियरिंग समझ में नहीं आएगी, और उनको साइंस समझ में नहीं आएगी, इसलिए नहीं, बल्कि वो जज्बात से मकलूब हो जाती है। जब कौम का मामला उसके सामने आएगा या उसके नीचे जो है वो कुछ लोगों का मामला आएगा, तो अब वो जो है ना, अगर जज्बात आ गए उसके ऊपर, किसी के खिलाफ हो गई, अब गलत फैसला, ठीक है। इसी वजह से औरत जो है वो इमाम नहीं हो सकती, आलिम हो सकती है, आलिमा हो सकती है, बहुत जो है वो इंटेलिजेंट हो सकती है, बहुत अच्छे मशवरे दे सकती है, लेकिन इमाम नहीं बन सकती। उसको ये अपने इल्म को जो 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 अप्लाई करना होगा वो इमाम के तहत रह करके करना होगा, और इमाम अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया, गर्दन भी उसी की फंसेगी फिर मर्द की, क्योंकि वो इमाम है ना। औरत की तो गर्दन को भी बचा लिया ना इस तरीके से नीचे रख करके, लेकिन वो नहीं समझती इस बात को। तो औरत मातहत रह करके काम करेगी, चाहे वो दुनिया का काम हो, चाहे वो दीन का काम, अपने इल्म को, अपनी समझ को, अपनी इंटेलिजेंस को। नबी अलैहिस्सलाम ने सुलह जो बहते रिजवान के मौके के ऊपर कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया, किसके मशवरे से वो मसला हल किया? अपनी बीवी के मसले से वो मसला है। तो क्या बीवी के अंदर इंटेलिजेंस नहीं थी? ऐसे ही उन्होंने जो है वो इतना जबरदस्त मशवरा दे दिया नबी अलैहिस्सलाम को, और नबी अलैहिस्सलाम ने उस मशवरे को जो है वो बाकायदा इस्तेमाल भी कर लिया। तो है औरत के अंदर ये जहानत, है इल्म की इस्तेदाद, लेकिन शी कैन नॉट बी द लीडर जज्बात की वजह से। और जज्बात अल्लाह ने दिए क्यों? घर की वजह से, बच्चों की वजह से, खानदान की वजह से, वहां पे अप्लाई करने के लिए अल्लाह ताला ने जज्बात दिए हैं। ऐसी नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह जज्बात जो है वो कोई बहुत बुरी चीज जो औरत को दे दी है, भाई उस जगह अप्लाई करने के लिए दिए थे, जहां पे मर्द जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, मर्द वहां पे उसकी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इतनी ज्यादा। तो मसला क्या होता है, ना समझ में आने की रीजन क्या होती है कि जिसकी वजह से औरत की बात नहीं समझ में नहीं आती, वो वही रीजन होती है कि जिसकी वजह से मर्द को भी बात समझ में नहीं आ रही होती। ये नहीं है कि औरत नाकसुल अकल है इस वजह से उसको बात समझ में नहीं आ रही होती, नहीं, मर्द को भी बात समझ में नहीं आ रही होती। क्यों समझ में नहीं आ रही होती? सही जवाब दे दें तो हम आपकी जान छोड़ देंगे। क्या रीजन होती है जिसकी वजह से मर्द को बात समझ में नहीं आ रही होती और ना औरत को बात समझ में आ रही हो, नहीं आ रही होती? नाकस और अकल होना उसकी रीजन नहीं होती है, उसकी रीजन ना सुनना होती है, सुनती नहीं है, ना मर्द सुनते हैं ना औरत सुनती है, राइट? पे अटेंशन नहीं कर रही होती, गौर से नहीं सुन रही होती, डिफोकस्ड होती है, डिस्ट्रैक्टेड होती है, नीयत खराब होती है, राइट? या जो है वो प्री मेडिटेटेड अजम्पशंस होते हैं, सनद याफ्ता होते हैं, ये रीजंस बनते हैं, ठीक है? इस वजह से बात समझ में नहीं आ रही। अगर हम अपनी नीयतों को ठीक कर लें, और हम अपने इन मसलों को जो है ना वो ठीक करने का इरादा कर लें और अल्लाह ताला से मदद मांग लें, हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे और हम अपने मसलों को अल्लाह की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे बगैर मशायख का सर खाए हुए, बगैर मशायख का सर खाए हुए। हम उनसे सीखेंगे लेकिन हम सर नहीं खाएंगे, सीखेंगे, उनकी बात को तवज्जो से सुनेंगे, वो एक दफा हमारे सवाल का, जो हमारे मुनासिब सवाल होते हैं, प्रॉपर सवाल होते हैं, उनका जवाब देंगे, हम उस जवाब को समझेंगे और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे, हमारा मसला अल्लाह हल कर देगा। यह है करने का काम हमारा, ठीक है। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।